नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका कहानी दिल से दिल तक में। दोस्तों, आज मैं फिर से मन्नू भंडारी जी की एक बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दो कलाकार। हर इंसान का परिस्थितियों को देखने और उसे समझने का नजरिया अलग अलग होता है। इस कहानी के पात्र भी कुछ इसी तरह के हैं। ये कहानी दो सहेलियों की है, जिनके विचारों और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता है। आइए कहानी सुनते हैं। ए रूनी, उठ! और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया।
क्या है, क्यों परेशान कर रही है?
आंख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया।
ओहो, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की।
अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली।
हाँ, किधर से देखूं? ये तो बता दे, 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है।
तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर।
ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है।
अच्छा जरा सोच कर बता कि ये किसका प्रतीक है।
तेरी बेवकूफी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली।
अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया के कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी?
मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है।
और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, दीदी सब बच्चे आकर बैठ गए हैं, चलिए।
आगे सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं अभी आई।
क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, जरा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो सारे जमादार दाइयों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी।
जा जा, समझते हैं तो समझते हैं, तू जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींच कर तो समय बर्बाद नहीं करते।
और पैर में चप्पल डालकर वो मैदान में चली गई, जहाँ बिना किसी आयोजन के ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रात के 10 बजे थे, सारे हॉस्टल की बत्तियां नियम के अनुसार बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तल्ले पर अंधेरे में ही हुसुर फुसुर चल रही थी। रविवार के दिन तो यूं ही छुट्टी का मूड रहता है, दूसरे दिन में काफी नींद ली जाती थी, सो 10 बजे लड़कियों को किसी तरह भी नींद नहीं आती थी। तभी हॉस्टल के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाट तो हॉस्टल में बस अरुणा के ही हैं, रात 9 बजे लौटो या 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं, हम लोग तो 10 के बाद भी बत्ती नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी? आज सवेरे से ही वे बड़े परेशान थी, फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था, दोपहर से वे उसी के यहाँ बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ बेचारे का, शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो बड़ी भक्त है अरुणा दी की, उनके जैसे गुण अपना ले तो तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उन्हें यही सब करना है तो कहीं और रहे, हॉस्टल में रहकर ये जो नवाबी चलाती है सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सारी लड़कियां डरती हैं तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रौब खाती हैं, इनका तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तू भी जिस दिन हार तोड़कर दूसरों के लिए यूं परिश्रम करने लग जाएगी ना, उस दिन तेरा भी सब ड्रॉप खाने लगेंगे। पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खाक काम करोगी। अच्छा अच्छा चल, अपना लेक्चर अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत धीरे से, जिससे चित्रा की नींद ना खराब हो। पर चित्रा जग रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी। उसे नींद कैसे आती भला। मेस से उसका खाना लाकर मेज पर ढक कर रख दिया था। अरुणा के आते ही वो उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लग गई, क्या हुआ अरुणी?
वो बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह उसे नहीं बचा सके।
चित्रा ने माचिस लेकर लैंप जलाया और स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा,
रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है।
और उसकी आंखें फिर छल छला आई। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा सा खा ले।
नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लैंप बुझा दे।
उसके बाद दो तीन दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ ये गम भी जाता रहा और सब काम ज्यों का त्यों चलने लगा। चार बजते ही कॉलेज से लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा करो।
अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय।
तेरे मनोज की चिट्ठी आई है।
कहाँ, तूने तो पढ़ ही ली होगी फाड़कर।
चल हट, ऐसी बोर चिट्ठियां पढ़ने का फालतू समय किसके पास है। तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े, बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत ना हुआ लेक्चर हुआ।
अच्छा अच्छा तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियां, हमें तो वो सब आता नहीं।
जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे।
हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो ये सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे?
तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों?
तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है।
अरे इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वो समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। तो शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठे, बस यही तमन्ना है।
कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है।
वो काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। अच्छा ये बता कि तेरे ये सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा भी दिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? अरे ये सब काम एक के किए नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। फिर दोनों में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहसें होती और चित्रा अंत में कान पर हाथ धरकर उठ जाती। अच्छा अच्छा बंद कर ये लेक्चर बाजी, बोर कहीं की। ये पिछले 5 वर्षों से इसी प्रकार चल रहा था। हर 10-20 दिन बाद दोनों में अपने अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मा गर्म बहस हो ही जाती, पर ना वो उसकी बात का लोहा मानती थी ना वो उसकी बात के कायल होती थी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तो है नहीं, सारे दिन बस भटकती रहती है। फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया।
आज शाम को एक स्वयं सेवकों का दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ।
शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वो अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो आया। वहां लोगों के जीने के लाले पड़ रहे हैं और उसमें भी इसे चित्रकारी ही सूझती है, और न जाने कितनी बात सोचते सोचते वो सो गई। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गनीमत है तो लौट आई, मैं सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊं।
क्यों, तेरा जाने का तय हो गया?
हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह के बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी।
सच कह रही है तो चली जाएगी चित्रा? 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात ही मैं भूल ही गई कि हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी?
अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी नहीं रहेगी मेरी कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज का और सारे संसार का कल्याण करना। पर अरुणा के कानों में उसकी कोई भी बात नहीं पड़ रही थी। चित्रा के साथ बिताए हुए पिछले 6 सालों के चित्र उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और वो उन्हीं में खोई बैठी रही। क्या सोचने लगी रूनी, मनोज की याद आ गई क्या?
चल हट, हर समय का मजाक अच्छा नहीं लगता।
उस दिन रात में भी अरुणा अपने और चित्रा के बारे में ही सोचती रही। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि आदि में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की नजर से देखता था। जब उसके बीए के इम्तिहान थे तो चित्रा कितना ख्याल रखती थी उसका। वो अक्सर चित्रा को डांट दिया करती थी, पर कभी उसने बुरा नहीं माना। यही चित्रा जब चली जाएगी बहुत बहुत दूर, ये 2 महीने भी कैसे निकालेगी? और यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी, एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, फिर गुरु जी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए पर वो लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहां जमा थीं, कुछ बार बार आकर पूछ जाती थीं कि चित्रा लौटी या नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वो जाने वाली है, अरुणा ने सोचा। वो खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। अरे बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरे वो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा कि वो वहां मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर पूरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में इतनी देर हो गई। चर्चा इसी पर चल पड़ी, कैसे मर गई, कल तो उसे देखा था। किसी ने दार्शनिक मुद्दा में कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ी आती है, आदि आदि। पर इस सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। 4:30 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिल कर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। पर अरुणा ना आई सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिकमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चले, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले एक साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे नवजीवन की प्रेरणा देते और वो उन्हीं में खोई रहती। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती, अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही चकित रह जाता। दुख, दारिद्र और करुणा जैसे साकार हो उठे थे। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर गदगद थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहां कहां उठाए बिठाए। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने साकार हो गए। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वो भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी?
चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई।
अरे बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8।
मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है। नमस्ते करो अपनी मासी को।
बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया। पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुख देख रही थी। वो सारी बात की तुक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका,
कैसी मौसी है, प्यार तो कर।
और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा एहसास पाकर लड़की चित्रा की गोदी में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा,
तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है।
सच? तब तो मासी तुम जरूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम हमारे घर आओगी तो अपनी कॉपी दिखाऊंगी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मासी, समझा समझा कर।
चित्रा समझाती हुई तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वो तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी।
ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मासी?
इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती।
ये सचमुच के बच्चे थे मासी?
अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ?
मासी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की।
उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे, परिचय हुआ। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा,
आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ।
बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वो उन्हें एक टक देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं?
कहा तो मेरे।
अरे बताओ ना, मुझे बेवकूफ बनाने चलिए।
बता दूं?
और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली,
यही वे दोनों बच्चे हैं।
क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गईं।
क्या सोच रही है चित्रा?
कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। दोस्तों, कलाकार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका किसी न किसी कला से संबंध हो, जैसे चित्रकार, संगीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, अभिनेता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समाज को नया जीवन दे, उसे सुधार दे, सुंदर बना दे, तो क्या वो कलाकार नहीं कहलाएगा? अरुणा ऐसी ही एक कलाकार थी, जो कागज पर जीवन जगत का चित्र बनाने की बजाय लोगों के जीवन को सुधारने और उसको संवारने में ही विश्वास रखती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।